ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம் ஸ்கந்த் தசம அத்யாய் ஸ்லோக் சங்கியா 28, 29 and 30. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கர்னே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்னா கர்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹேன் உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனாஶலாகய சக்ஷுரோன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம். வன்ஷீ விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பரதரணபிம்பஃபல தரோஷ்டா புரணேந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்தநேத்ரா க்ருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வ அஹம் ந ஜானி. யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ர மருத ஸ்துவந்தி ீதேசாங்கபத் கிரமோபனிஷதி காயந்தியம் சாமகா தியானாவஸ்திதத் கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யஸ்யாந்தம் ந விதோ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மே நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாக்வத சேவயா. பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர பவதி நைஷ்டிகீ பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். வஞ்சாகல்பதரூப்யஸ்ய க்ரிபா சிந்துப்யைவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से प्रस्थान कर रहे हैं तो जैसे जैसे उनका रथ चल रहा है तो वहाँ की स्त्री वहाँ के सारे पुरुष तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, परंतु स्त्रियाँ जो हैं वो महलों की छतों पे एक छत से दूसरे छत पर और दूसरे छत की से आगे जैसे जैसे रथ आगे जा रहा है तो वो भी आगे जा रही हैं और साथ साथ में भगवान के विषय में वार्तालाप करती जा रही हैं। ये उद्गार जो बहुत ही प्रशंसनीय है इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने उसके विषय में बहुत ही विस्तार से बताया है। अत्यंत ही सुंदर पहले कृष्ण से संबंधित वंश कुल यदुकुल के बारे में और उसके बाद द्वारिका और वृंदावन के विषय में उन सब की प्रशंसा करने के बाद अब वो जो स्त्रियां हैं ना वो अपने हृदय की सबसे अंतरिंगा भाव को प्रकट कर रही हैं, अर्थात अब वो श्री कृष्ण की पत्नियों की प्रशंसा कर रही हैं। वास्तव में क्योंकि ये स्त्रियां हैं अतः उनके सौभाग्य को देख के तरस रही हैं जो स्त्रियां भगवान के साथ रहती हैं, जिन स्त्रियों का पाणी ग्रहण भगवान ने किया है, जिन स्त्रियों को भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है उनके विषय में कहती हैं। श्लोक नंबर 28 मेरे साथ साथ पढ़िए। नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्षितो ह्यास गृहीत पाणि भी पिबन्ति आसख्य धरामृतं मुहुर् व्रज स्त्रिय सं मुमुहुर् यदाशया। नूनं व्रतास्नानहुता दिनेश्वर समर्चितो ह्यास गृहीत पाणि भी पिबन्ति आसख्य धरामृतं मुहुर् व्रज स्त्रिय सं मुमुहुर् यदाशया। नूनं व्रतास्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यास गृहीत पाणि भी पिबन्ति सख्य धरामृतं मुहुर् व्रज स्त्रिय सं मुमुहुर् यदाशया। नूनं व्रतास्नानहुता दिनेश्वरः समर्चितो ह्यास गृहीत पाणि भी पिबन्ति सख्य यदरामृतं मुहुर् व्रज स्त्रिय सं मुमुहुर् यदाशया। वे कह रही हैं नूनम व्रता स्नानम। नूनम का मतलब होता है निश्चय ही पुनर्जन्म, पहले वाला जो जन्म हो गया था पूर्व जन्म में व्रत स्नान उन्होंने बहुत बड़े बड़े व्रत किए होंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान किए होंगे, बहुत उन्होंने तपस्याएं की होंगी। क्योंकि व्रत करने से जब हम तपस्या करते हैं तभी हमें कोई शुभ वस्तु का प्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कह रहे नूनम व्रत स्नान। स्नान का मतलब होता है स्नान करना, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ बाथरूम में स्नान कर दिया, इस तरह नहीं। यानी कि बहुत बहुत यात्राएं की होंगी और वहां पर पवित्र नदियों में स्नान किया होगा, उनको ये जो सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है वो इतना सरलता से प्राप्त नहीं होगा, हुआ होगा क्योंकि नूनम व्रता स्नानम हुतात, हुता का मतलब होता है अग्नि में आहुति, यज्ञ उन्होंने बहुत सारे किए होंगे, आदिना मतलब और भी बहुत कुछ किया होगा, दान दिया होगा, यज्ञ किया होगा, तपस्या की होगी, स्नान किया होगा, यात्राएं की होंगी, बहुत बहुत पुण्य कर्म जब एकत्रित हुए होंगे उनके, तभी क्या हुआ होगा उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? समर्षितम पूरी तरह से पूजित ही निश्चय ही अस्य उसका गृहीत पाणी भी, गृहीत अर्थात विवाहित स्त्रियों द्वारा, पाणी भी का मतलब इसका क्या मतलब होता है, ये एक रसम होती है हमारे वैदिक सभ्यता में, क्या करते हैं कि जब विवाह होता है तो पत्नी का हाथ पति के हाथ में रख के उसको बांधते हैं, इसको बोलते हैं पाणी ग्रहण करना, यानी कि विवाह के समय वो क्या करते हैं कि हाथ बंधन होता है, और हाथ बंधन के समय वो जो पुरुष होता है वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन भर इसका पालन करूंगा, और स्त्री समर्पण करती है कि मैं जीवन भर इसका साथ निभाऊंगी। तो ये कुल नारियां हस्तिनापुर की अंत में कह रही हैं कि हे सखियो, इस पुरुष ये जो सामने कृष्ण जा रहा है उसके द्वारा जिनका पाणी ग्रहण हुआ है, उन्होंने जन्म जन्मांतर तक बहुत बहुत व्रत किए होंगे, अनुष्ठान किए होंगे, स्नान किए होंगे, यात्राएं की होंगी, बहुत बहुत तपस्याएं की होंगी, ध्यान लगाया होगा, तभी तो ये कृष्ण की पत्नी बनी हुई है, ये इतना सरलता से उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो प्रश्न उठता है कि हर किसी को तो पत्नी बनने का सौभाग्य मिलता है, मतलब किसी न किसी की, तो फिर यहाँ भगवान की पत्नी बनकर उनको क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिनके लिए उनके मन में, मतलब अब क्योंकि वो स्त्रियां हैं इसलिए वो उनके किस सौभाग्य को देख के तरस रही हैं, वो आगे कह रही हैं, पिबंती आसत यधरामृतम मुहुर, कि इनका कैसा सौभाग्य है, पिबंती अर्थात स्वाद लेती हैं, पीती हैं, पीती रहती हैं, क्या हे सखी कितनी सौभाग्यवान हैं वो स्त्रियां जिनका विवाह इस पुरुष के साथ हुआ है, और वो सदैव स्वाद लेती हैं किसका, अधरामृतम मुहुर, उनके होंठों के अमृत का, मुहुर मतलब पुनः पुनः, ये उनके अधर अमृत को बार बार पीती रहती हैं। अधर अमृत का अर्थात है कि होंठों के अमृत को, अर्थात बार बार उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो भगवान के जो इतने अधर मधुर हैं, इतने स्वादिष्ट हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। वास्तव में यदि जीव का वास्तविक कोई सौभाग्य है तो यही है कि उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, और ये जो स्त्रियां हैं जिनका विवाह भगवान के साथ हुआ है उनको ये सौभाग्य कितना सरलता से प्राप्त है, वो अपना पूरा का पूरा प्रेम भगवान के ऊपर निछावर कर सकती हैं, वो जब चाहे भगवान को आलिंगन कर सकती हैं, पुनः मुहुर का मतलब होता है बार बार वो भगवान को प्रेम कर सकती हैं, उनका अधरामृत पान कर सकती हैं, कितना सुंदर दृश्य दिखा रही हैं ये स्त्रियां कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो कामदेव को भी भस्म करने वाले हैं, जो मदन मोहन को मात परास्त करने वाले हैं, ये जो भगवान की रानियां हैं, भगवान की जो पत्नियां हैं, वो कितना सौभाग्य है उनका कि वो उनका प्रेम प्राप्त है उनको, वो हर तरह से, वास्तव में स्त्री की सबसे बड़ी शोभा है कि वो अपना प्रेम न्यौछावर कर सके कृष्ण को, क्योंकि स्वपतिम जैसे हमने पढ़ा, वास्तव में हमारी आत्मा का पति जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, परंतु अपने कर्मों के अनुसार हम जो देह प्राप्त करते हैं, तो हमें विभिन्न पति प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं उनका कितना सौभाग्य है कि जो उनकी आत्मा का पति है वही इस संसार में उनकी देह का पति प्राप्त उनको हुआ है। तो इसलिए वो अपना पूरा का पूरा प्रेम उस भगवान श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर सकती हैं। वो बिंदास बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के वो भगवान के अधरामृत को बार बार पान कर सकती हैं। वो अधरामृत आगे कह रहे हैं, व्रज स्त्रिया सम मुमुहुर्यदाश्रया। ब्रज स्त्रिया यानी ब्रज भूमि की जो स्त्रियां हैं, जो गोपियां हैं, सममुहुर यानी बहुधा मूर्छित हो जाती थी यत आशय, इस प्रकार के अनुग्रह की आशा करते हुए। यानी कि ब्रज की स्त्रियां भी भगवान से बहुत स्नेह करती थी, परंतु उनको ये चीज प्राप्त नहीं थी। वो इतना यहाँ पर यह स्त्रियां दो बहुत ही मुख्य रहस्यों का उद्घाटन कर रही हैं। एक तो भगवान की पत्नियों को कितनी सहजता से भगवान के अधरामृत का पान करने का अवसर प्राप्त होता है, और दूसरा ब्रज की स्त्रियों के विषय में बता रही हैं कि ये अधरामृत ब्रज की स्त्रियों ने भी पान किया था, परंतु जब भगवान उनसे दूर हो जाते तो वो इस अधरामृत के विषय में सोचकर उसकी कल्पना करके भी मूर्छित हो जाते थे। यहाँ पर वास्तव में भक्तों भगवान की लीला छिपी हुई नहीं रह सकती। अभी ध्यान देने की बात क्या है कि ये सारी बातें सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसलेशन पता नहीं है, वो संस्कृत में बोल रहे हैं। वहां पर सब कुछ सब लोग समझ रहे हैं कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन फिर भी और साक्षात जितने भी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज हैं, कुंती महारानी हैं और बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, सब लोग यहाँ पर हैं और स्वयं भगवान भी सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। परंतु कोई भी ये नहीं कह रहा क्या बकवास कर रही हैं ये सब लड़कियां, ऐसा मतलब कोई नहीं बोल रहा। लेकिन के देखो अपनी पत्नियों के साथ प्रेम का संबंध भगवान निभाते तो ठीक है, परंतु यहाँ पर ब्रज स्त्रियों की बात क्यों हो रही है? नहीं, सब भगवान सब जानते हैं कि वास्तव में भगवान ही सबके वास्तविक प्रीतम है, तो हर किसी को भगवान से प्रेम करने का अधिकार है। परंतु ये अधिकार जिस तरह से बगैर किसी रिस्ट्रिक्शंस के भगवान की पत्नियों को प्राप्त है, उतना किसी और का सौभाग्य नहीं है। इसलिए वे कह रहे हैं, व्रज स्त्रिया सम मुमुहुर्यदाश्रया। जिस अधरामृत को याद करके ब्रज की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी, इतना सुंदर, इतना मनोहर, इतना मधुर भगवान का दिव्य संबंध दिखला रही हैं कि किस तरह से भगवान का आलिंगन करती हैं वो स्त्रियां, किस तरह से भगवान के अधर को चूमती हैं, उस भगवान के मधुर अधर अमृत के बारे में खाली सोचकर, उसकी याद करके, उसकी कल्पना करके भी गोपियां जो हैं वो मूर्छित हो जाती हैं। तो गोपियों का प्रेम सदैव ज्यादा दिखाया गया है, मतलब याद करके मूर्छित हो जाना, यानी गोपियों को हर किसी ने आदर दिया है। वास्तव में हमें जानना चाहिए, चाहे कोई भी संत है, गोपियों की प्रशंसा की है, गोपियों का जो वृह भाव है, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम है वो सदैव आदरणीय बताया गया है। अनुवाद देखिए, हे सखियो तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणि ग्रहण हुआ है, उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, अग्नि यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत को निरंतर आस्वादन अर्थात चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही बहुधा मूर्छित हो जाती थी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों के सांसारिक गुणों के शुद्ध करने के निमित्त हैं, जिससे वे क्रमशः परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक उन्नत हो सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है और यह अवस्था स्वरूप कहलाती है, जो जीव का वास्तविक रूप है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीकरण। स्वरूप की उस पूर्ण अवस्था में जीव प्रेमा भक्ति की पांच अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस की भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण रहते हैं, अतएव उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त के प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे प्रभु सखा पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के दो प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है, एक है स्वकीय तथा दूसरी परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारिका की रानियां स्वकीया थी, अर्थात वे बरी ब्याही हुई थी, लेकिन ब्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थीं, जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव पर किया था। उन बालाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन हमारा लक्ष्य ना तो अनुष्ठान है, ना सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि जो अपने में सीमित है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के निमित्त है, भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के लिए है। इन पांच अवस्थाओं में से किसी एक के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान से संबंध स्थापित करना होता है और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुण गोपियों द्वारा कृष्ण का चुंबन लेना कोई विकृत सांसारिक गुण नहीं है। यदि ऐसा होता तो शुकदेव जैसे मुक्त आत्मा को उनका आस्वाद करने का कष्ट ना उठाना पड़ता, ना ही चैतन्य महाप्रभु ग्रस्त जीवन त्याग कर इन विषयों के प्रति आकर्षित हुए होते। यह अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य के विषय में बता रहे हैं कि हम जीवन में जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वास्तव में हम इसलिए कर रहे हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें। हम भौतिक बंधनों से, भौतिक वस्तुओं से और भौतिक आसक्तियों से विरक्ति प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। और स्वरूप क्या है हमारा? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, मेरा यही स्वरूप है। और पांच अवस्थाओं में भगवान के साथ रस का आस्वादन, दास्य रस, वास्तव में सेवा ही मुख्य रस है। अब आप वो सेवा किस स्वरूप में करना चाहते हो? आप भगवान को अपना प्रभु बनाना चाहते हो, अपना सखा बनाना चाहते हो, अपना पुत्र या पति बनाकर माधुर्य संबंध भगवान के साथ निभाना चाहते हो? ये जैसे ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी तपस्या, जैसे जैसे हमारा कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम सीरियस और गंभीर होता जाता है, तो उसके साथ साथ ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने के निमित्त जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं, तो भगवान की स्वाभाविक दिव्य सेवा करने के लिए हम हमारे हृदय में खुद ब खुद एक है ना भाव प्रकट होता है। तो इन पांच अवस्थाओं में से किसी एक से प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के साथ संबंध स्थापन करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना ही प्रकट हो जाता है। फिर क्या होता है, हम उसी संबंध के साथ भगवान के, हम अपनी सिद्ध देह के साथ भगवान के साथ उसी संबंध के साथ रहते हैं, चाहे हम सखा बनकर रहें, चाहे मित्र बनकर रहें, चाहे दास भाव से रहें, या चाहे माता पिता के भाव से, या प्रेमी प्रीतम के भाव से। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि ये जो भगवान के साथ संबंध है, अब यहाँ पर प्रक्रिय और स्वकीय दो भाव बताए गए हैं। स्वकीय भाव ये होता है कि अपनी पत्नी के साथ प्रेम का संबंध रखना, और परकीय भाव क्या होता है कि जिसके साथ विवाह नहीं होता है, मतलब प्रेम का संबंध निभाना उसके साथ, प्रेमी और प्रीतम का संबंध। तो ये जो वास्तव में इस संसार में जो ये संबंध होता है ना किसी के साथ भी, तो वो अपराध है। वो सांसारिक आकर्षण एक लड़के और लड़की के अंदर जो होता है, तरुण और तरुणियों के अंदर, वो अपराध है, ये बहुत विकृत है। परंतु जो भगवान के साथ जीव का संबंध होता है, क्योंकि वो वास्तविक संबंध है, इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण का गोपियों के द्वारा उनका अधरामृत पान करना या उनका चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं। अगर ये विकृत होता, अपराध होता, तो फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा को इसके विषय में बात करने की क्या आवश्यकता थी। और चैतन्य महाप्रभु जो जीवन भर अपने गृहस्थ को त्याग दिया उन्होंने यंग एज में, तो फिर इन अगर ये विषय ऐसे विषय व्यक्तियों के जैसे विषय होते, तो इन विषयों की ओर वो आकर्षित क्यों होते। यह सर्वथा ये जो अवस्था है वो कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है कि जीव का कृष्ण को प्रेम करने का अधिकार प्राप्त हो। जो जीव जो संसार में आकर भौतिक व्यक्तियों से अपना प्रेम है ना स्थापित करता है, वो भौतिक वस्तुओं से और व्यक्तियों से अपना प्रेम हटाकर भगवान की तरफ पूरा का पूरा जब अपना प्रेम उंडेल देता है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वाकई में प्रशंसनीय बात है। उनकी प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर उन भगवान की पत्नियों की, जो कि भगवान के साथ आलिंगन करती हैं, उनका उनको प्रेम करती हैं, उनके अधरामृत को पान करती हैं। इसके बाद ये बता रही है कि किस प्रकार से उन समस्त रानियों के साथ भगवान का विवाह हुआ, मतलब इसके विषय बता रही है कि कुछ रानियों को तो भगवान ने जरासिंह को, शिशुपाल को हराकर, उनको जरासिंह को हराकर, और उसके बाद रुक्मणी को, जैसे शिशुपाल को हराकर रुक्मणी को लेकर आए, इस तरह से कुछ स्त्रियों का अपहरण किया, कुछ को है ना भमासुर जो नरकासुर की कैद में थी उनको उसको मार के, किस तरह से भगवान ने किस किस के साथ विवाह किया उसके विषय में बता रहे हैं। वे कह रही हैं, या वीर शुके नहिता स्वयंवरे प्रामात्य चेद्य प्रमुखान ही शुष्मिणा प्रद्युम्न सांबाम्बसुता दयोपरा याश्चाहृता भौमवदे सहस्रस या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रामात्य चेद्य प्रमुखान हि शुष्मिणा प्रद्युम्न सांबाम्बसुता दयोपरा याश्चाहृता भौमवदे सहस्रशः। या वीर्य शुल्केन, या वीर्य मतलब ये स्त्रियां वीर्य पराक्रम शुल्केन मतलब मूल्य चुकता करने से, भगवान ने बहुत इनको प्राप्त करने के लिए क्या किया, हृता बलपूर्वक बलपूर्वक ले जाई गई हैं, यानी कि कुछ को तो भगवान ने अपहरण किया। स्वयंवरे, स्वयंवर में प्रमथ्य मतलब मान मर्दन करने, उनको प्रमथ किया, उनको मथ दिया, किसको चैद दिया, राजा जरा सॉरी राजा शिशुपाल चैदी नरेश जो थे, राजा शिशुपाल प्रमुखान यानी इत्यादि और भी जरासन इत्यादि को, हालांकि स्वयंवर में वो भगवान से पहले आ गए थे और शिशुपाल को रुक्मी ने ये वचन दिया था कि रुक्मणी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करवाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान उसको लेकर चले गए, अपहरण करके चले गए। और उसके बाद बता रहे हैं कि निश्चय ही शुष्मिणः, ये जो शिशुपाल जरासन जिनके बीच में से वो रुक्मणी को लेकर आए, निश्चय ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली, शुष्मिणः मतलब अत्यंत ही शक्तिशाली थे, और उनसे इन अलग अलग रानियों से उन्होंने विवाह किया, रुक्मणी जी से किया, जामवंती जी से किया और नग्नजिति से किया। तो उनसे अभी एक नग्नजिति जो भगवान की पत्नी थी उनको भी भगवान ने अपहरण किया था, और जामवंती को किस तरह से प्राप्त किया था, उसके पिता जामवंत को हरा के, है ना। तो उनकी संतानें कैसे हुई, कौन कौन सी हुई, प्रद्युम्न सांब, प्रद्युम्न किसके संतान थे, रुक्मणी जी के, ठीक है, सांब जामवंती जी के, और अम्ब जो थे वो नग्नजिति के पुत्र थे, सुतादया संतान, ये सारी संतानें, एक तो हरण करके लिया, फिर इतना मतलब धूमधाम से शादी की, फिर बच्चे भी उनके पैदा हुए और संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद कह रहे हैं पर अपरा अन्य स्त्रियां, दूसरी स्त्रियां कहाँ से मिली उनको, याश्चा हृता भौमवदी सहस्रश, याश्चा यानी कि जो दूसरी थी वो भी आहृता इसी प्रकार ले जाई गई, किस तरह से लेकर गई, भौमवदे, भौम एक राजाओं का जो राजा थे भौमासुर, उसका वध करने के बाद सहस्रश 16,000 रानियां जो कि भगवान की थी वो भौमासुर की कैद में थी, और उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें यहाँ से निकालिए। तो जब भगवान ने उनकी सहायता करने के लिए भौमासुर का वध कर दिया, बोले तुम जाओ अभी अपने घर पे, परंतु उन्होंने कहा हम इतने साल इस असुर के साथ रही हैं, अभी हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, आप हमें स्वीकार कर लीजिए अन्यथा हम अपने प्राण त्याग देंगे। ये उन स्त्रियों का कितना सौभाग्य है कि भगवान संसार ने उन्हें त्याग दिया और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से भगवान के विभिन्न स्त्रियों के साथ विवाह हुए। अनुवाद देखिए, इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब आदि, उन्होंने शिशुपाल आदि अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक योग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह यानी स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमार के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारियों के पिता आमंत्रित करते और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह युद्धों में योद्धा राजकुमार की मृत्यु हो जाती थी तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमार जीवन बलिदान कर देते थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी योग
योग्य तथा सुंदर कन्या भगवान श्री कृष्ण को मिले, लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजकुमारों का मान मर्दन करके विजयी हो गए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दशम स्कंद में इस तरह अपहृत की गई स्त्रियों का विशद वर्णन मिलेगा। अनेक राजाओं की कुल मिलाकर 16,100 सुंदर राजकुमारियां भौमासुर द्वारा अपहृत की जाकर उसकी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखी गई थी। इन सुंदरियों ने भगवान से अत्यंत करुण स्वर में अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उसे मारकर उन्होंने मुक्त कर दिया था। फिर इन बंदी राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी राजकुमारियां पतित हो चुकी थीं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों के समान ही उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और प्रत्येक से 10-10 संतान उत्पन्न हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुईं और हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे, अर्थात 10 बेटे और एक बेटी। इस तरह से कुल मिलाकर उनके परिवार में कई करोड़ सदस्य थे। यहाँ पर श्लोक भगवान के जो उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं कि खाली फैमिली मेंबर्स करोड़ों करोड़ों थे उनके। हस्तिनापुर की ये नारियां भगवान की स्त्रियों की सौभाग्य के विषय में सोचकर इतना गदगद हो रही हैं और इतनी सराहना कर रही हैं, मतलब वो कह रही हैं कि ये स्त्रियां जो कि भगवान की पत्नियां बनी हैं वास्तव में धन्य हैं। ये क्या धन्य है, बल्कि इनके होने से, मतलब इनका इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको, इनके कारण जो स्त्री जाति है ना वो धन्य हो गई। मतलब इनका तो जन्म ही स्त्री जाति को धन्य करने के लिए हुआ है। तो क्योंकि ये इनको भगवान के साथ रहने का, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान को प्रेम करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो उन्होंने स्त्री जाति को धन्य कर दिया। वास्तव में ऐसा पुरुषों को कहाँ सौभाग्य प्राप्त है कि वो श्री कृष्ण के अधरामृत को पिएं या इतना प्रेम करें। ये तो स्त्रियों को ही ये अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके विषय में कह रही हैं, एता परम स्त्री त्वम पास्त पेशलम नीरस्त शौचम बत साधु कुर्वती या साम गृहात् पुष्ट करलोचनम पति न जात्वपेत्या हृतिभिर् हृदिश हृदिस्पृशन् एता परम श्री त्वमपास्तपेशलम नीरस्त शौचम बत साधु कुर्वते या साम गृहात् पुष्ट करलो सनह पति न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदिस्पृशम् एता परम स्त्री त्वमपास्तपेशलम् नीरस्त शौचम् बत साधु कुर्वते यास्याम गृहात् पुष्ट करलो चनह पति न जात्वपैत्या हृतिभिर् हृदिस्पृशन् एता परम स्त्रीत्व। एता मतलब ये सारी स्त्रियां कौन सी जिनके साथ भगवान ने विवाह किया परम ये सर्वोच्च हैं, इनसे बढ़कर तो कोई और हो ही नहीं सकता। स्त्रीत्वम यानी स्त्रीत्व, अपास्त पेशलम यानी अभी देखो स्त्रियों के अंदर एक अशोभा होती है, उनके अंदर एक दोष होता है, बल्कि यहाँ पर दो दोष गिनाए जा रहे हैं। पहला है क्या कि वो अपास्त पेशलम यानी कि वो डिपेंडेंट होती हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, वो बिना व्यक्तित्व के मतलब वो हमेशा किसी के, हालांकि ऐसा है ही करना है, लेकिन एक एक तरह से दोष माना जाएगा ना कि वो डिपेंडेंट है, है ना। तो उनके अंदर दो दोष पहले बता रही है कि वैसे तो स्त्रियों के अंदर एक दोष ये है कि वो डिपेंडेंट है, और दूसरा क्या निरस्त शौचम, निरस्त शौचन मतलब उसको अशौच का मतलब होता है कि उसको है ना शुद्धि शुद्ध नहीं माना जाता, अपवित्र माना, निरस्त शौचम यानी कि शुद्धि विहीन, उसको एक तो अपवित्र माना जाता है, पुरुषों की उपेक्षा स्त्रियों को डिपेंडेंट माना जाता है, तो यानी कि पुरुषों से उनको हीन माना जाता था स्त्रियों को। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, यास्यां गृहात् पुरुष करलोचन पति, यास्यां गृहपुर यास्या मतलब जिनके गृहात घर से पुरुष करलोचनम यानी कमल नेत्रों वाले पति पति ना जातु, कभी नहीं जाते नहीं थे अपैति। अब देखो ये पहला दोष क्या था, अस्वतंत्रता। अब जब स्त्रियों को भगवान ने स्वीकार कर लिया तो उनकी अस्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि अब वो अस्वतंत्र नहीं है बल्कि परम परमेश्वर जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो ब्रह्मा और शिव जी को भी कंट्रोल करने वाले हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति जिनके आंख के इशारे से चलती है, वो सुप्रीम कंट्रोलर अब उनके अधीन है। मतलब वो अगर आज्ञा देती है तो जाते हैं, वरना तो क्या बोला, यासाम गृहात पुष्कर लोचनपति न जात वपेत, यानी कि वो जाते ही नहीं थे उनके घर से जब तक वो आज्ञा नहीं देती थी। अभी किधर भगवान को काम भी होता था तो भगवान को भगवान बोलते थे कि अभी मुझे जाना है, तो बोलते नहीं अभी नहीं, मैंने प्रसाद तैयार किया, खा के जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो, ऐसा नहीं, अभी एक मुझे मंदिर जाना है, आप मुझे मंदिर लेके जाओ, अभी मैं आपको किधर भी जाने नहीं दूंगी। मतलब जब तक भगवान उनकी आज्ञा नहीं मिलती थी तो भगवान जाते नहीं थे, बल्कि यहाँ पर तो ये लिखा गया है यास्याम गृहात् पुष्कर लोचनपति न जातु न जातु पैत्याह, वो कभी जाते ही नहीं थे। यहाँ पर ये स्त्रियां ये बता रही हैं कि जाते ही नहीं थे, मतलब अभी कैसे आते, हस्तिनापुर में थे ना, लेकिन ये बता रही हैं कि भले ही वो हस्तिनापुर में चले गए परंतु एक रूप से सदैव अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नियों को भगवान का विरह मतलब विरह उनको इतना होता था, रोती रहती थी, नहीं, वो भगवान जो थे तो अपनी पत्नियों के साथ भी सदैव रहते थे। पत्नियां सब जानती थी कि हमारे कृष्ण हमारे भगवान है, तो वो कभी भी जाते नहीं थे। और उसके अतिरिक्त क्या है, क्योंकि ऐसे परम पवित्र भगवान के साथ उनका संबंध है, कौन है भगवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम पवित्रम, ये भगवान जो परम पवित्र हैं, जो सारी सृष्टि को पवित्र करने वाले हैं, ऐसे भगवान ने जिन स्त्रियों को स्वीकार किया, ऐसे भगवान जिनको आलिंगन करते हैं, जिनको चूमते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, भला वो अपवित्र कैसे हो सकती है। निरस्त शौचम, ये दूसरी उनका जो दूसरा दोष था वो भी स्त्रियों का भगवान ने उन्हें स्वीकार करके खत्म कर दिया। तो यहाँ पर कि ऐसे भगवान जो उनके आधीन हो गए थे, जो त्रिलोकी के नाथ है वो उनके आधीन होते थे, वो जाते नहीं थे। और आगे कहते हैं आहृत्य भी, आहृत्य भी मतलब वो भगवान उनको गिफ्ट देते थे, भेंटे देते थे, भगवान उनको उपहार देते थे, और हृदय स्पर्शन उनको बहुत हृदय को प्रसन्न करने के लिए उनके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे तो कुछ भी लाके उनकी खुशामद करते थे। हाँ, इससे क्या करते, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो स्त्रियां हैं उन्होंने
स्त्रियों की जाति के सारे दोषों को समाप्त कर दिया, क्योंकि जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण का संबंध उनके साथ जुड़ गया तो उन्होंने स्त्रियों के मान को करोड़ों गुना अधिक बढ़ा दिया। वास्तव में संसार में बहुत सारे संबंध हैं, परंतु सबसे जो उत्तम संबंध माना जाता है वो है पति पत्नी का संबंध, बहुत पवित्र संबंध। और उसमें जब पति पत्नी आपस, उनका जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, पति की इच्छा होती है कि कैसे मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न रखूं, और पत्नी का ये हृदय के अंदर केवल यही अभिलाषा होती है कि मुझे अपने पति को प्रसन्न रखना है। और ये संबंध जब भगवान के साथ जिसका ये संबंध जुड़ जाता है, उस स्त्री के भाग्य का तो क्या कहना है ना। तो यहाँ पर क्योंकि जो द्वारिका की रानियां थी उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये पवित्र संबंध उन्होंने भगवान के साथ जोड़ा था, उन्होंने करोड़ करोड़ जन्मों तक इतने पुण्य किए होंगे जो उनको भगवान कृष्ण पति के रूप में मिले थे, और इसी के कारण सारी स्त्री जाति धन्य हो गई। वास्तव में स्त्रियों का ये सौभाग्य है कि उनको कृष्ण पति रूप में मिले, और उनके कारण समस्त स्त्री जाति का मान बढ़ गया। अनुवाद देखिए, इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा, वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर रीति समझाएंगे। भगवत भक्त शुद्ध जीव होते हैं, जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कलमशों से रहित हो जाते हैं। ऐसे भक्त प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं पड़ता, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में लग पाना कठिन होता है। वे अधिक भौतिकतावादी होते हैं और उनसे भी कम किरात, होण, आंध, पुलंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन, खस आदि होते हैं। किंतु यदि वे सब ठीक से भगवत भक्ति में लग जाएं, तो उन सब का उद्धार हो जाता है। भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है और वे शुद्ध आत्माओं की तरह भगवत्ता में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो ये सब उपाधियां हैं, स्त्री होना, पुरुष होना, शुद्र होना, आभीर, कंक, खस, ये जो सब छोटी जाति के जो लोग होते हैं या बड़ी जाति के, वास्तव में हम सब ये नहीं हैं। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा हैं, लेकिन क्योंकि हम भौतिक संपर्क के साथ जीते हैं, तो अब जो भी हमें योनि मिली है वो उसके अनुसार हमारा संसार में मान सम्मान होता है। यानी कि शूद्र को शूद्र का स्टेज मिलेगा, ब्राह्मण को ब्राह्मण का, स्त्रियों, तो ये सब जो भी है उस वो भले छोटा बड़ा जो भी है वो सिर्फ हमारे शरीर तक ही लिमिटेड है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो फिर उसी तरह से हमें वो स्टेज प्राप्त होती है, उसी तरह का सम्मान या अपमान हमें मिलता है। लेकिन जब हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है, जब हम वास्तविक भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर ये सारी उपाधियों का मतलब होता है आत्मा को जिस शरीर में डाल दिया जाए और उसके अनुसार उसको जाना जाए। जैसे आज हमारा जो भी हमें कोई जानता है तो हमें हमारे शरीर से जानता है ना, कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा नाम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे भाई हाइट क्या है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, दिखता कैसे है। ये सारी उपाधियां मेरी नहीं है, आत्मा
के साथ ये सब वस्तुओं का कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं तो इसी के अनुसार हमें जाना जाता है। लेकिन जब हम अपने आत्म साक्षात्कार में आते हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ते हैं तो ये सारी उपाधियां जो हैं वो सारी उसकी जो अपात्रताएं जो हैं वो हट जाती हैं और शुद्ध आत्मा की तरह भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौमासुर के चुंगल में फंसी कन्याओं ने अपने उद्धार के लिए निष्ठापूर्वक प्रार्थना की थी। अपनी इस भौतिक और निष्ठा से वे तुरंत ही शुद्ध बन गई। अतएव भगवान ने इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके जीवन धन्य हो गए। इनका मान तब और भी बढ़ गया जब भगवान ने उनके अत्यंत अनुरक्त पति के रूप में भूमिका निभाई। क्या मतलब, भगवान ने ना उनकी फिर ऐसा नहीं उनको कभी भी एहसास दिलाया कि आप तो है ना किसी राक्षस के साथ रहकर आए हो, नहीं, बहुत ही प्रेम के साथ उनका पालन करते थे, उनको है ना गिफ्ट्स देते थे, उनको उनकी हर इच्छा उनके साथ रहते थे, भगवान उनको छोड़कर कभी जाते नहीं थे। तो इनका इतना मतलब उन्होंने क्या किया था, अपवित्र थी परंतु पूरी निष्ठा के साथ भगवान की शरण को स्वीकार किया था और भगवान को कहा था कि आप हमें स्वीकार करो, हम आपकी शरण में आए, तो हम भी अपवित्र हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इस संसार में सब हम अपवित्र जीव हैं, हम वास्तव में नराधम हैं, जो हम इस संसार में जी रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान से दूर होकर। पता नहीं कैसे हमारी आत्मा दुखी नहीं हो रही है, अब आनंद प्राप्त करना चाहते इस संसार में, ये नहीं सोचते कि वास्तव में हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण से दूर रहकर। यहाँ पर रजस्त्रियों के बारे में बताया, कलेजा फट जाना चाहिए हमारा कि कृष्ण से दूर हैं और हम खुश हैं। और स्त्रियों को तो मूर्छा आ जाती थी भगवान के विषय में सोचकर, हम तो ये महसूस तक नहीं करते कि हम भगवान से दूर हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि केवल हम अपनी सारी अपवित्रताओं को अपने साथ लेकर भी भगवान के शरण में जाते तो भगवान हमें अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान कहते हैं, ये अप्यन अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यदि सब अपराधियों में सबसे बड़ा अपराधी भी है तो भी यदि वो मेरा नाम का स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण में आ जाता है तो वो साधु बन जाता है, उसके सारे अपवित्रता है, उसके सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, भगवान अपनी 16108 पत्नियों के साथ सदा रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16108 पूर्ण अंशों में विस्तारित कर दिया था और उनमें से प्रत्येक भगवान था जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं था। श्रुति मंत्र पुष्टि करते हैं कि भगवान अपना विस्तार कईयों में कर सकते हैं। इतनी सारी पत्नियों के पति रूप में वे उन सब को महंगी से महंगी भेंट देकर प्रसन्न करते रहे और स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए और उसे अपनी पटरानी सत्यभामा के महल में लगाया। अतएव यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। श्रील रूपा देखिए, तो यहाँ श्रील रूपा जी बता रहे हैं कि वो अब भगवान ने क्या किया था, स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेकर आए थे और सत्यभामा के महल में लगा दिया था। हुआ क्या था कि जब ये 16108 रानियां भौमासुर की कैद में थी तो वहां से जब उनको छुड़ाने के लिए भगवान गए थे ना, जब उन्होंने प्रार्थना की थी तो जब उनको छुड़ाने के लिए गए तो भौमासुर का वध कर दिया। अब भौमासुर के पास दो चीजें रखी हुई थी जो कि उन्होंने इंद्र और उसकी माता अदिति से ली थी। इंद्र का छत्र था और अदिति माता के कुंडल थे। अब भगवान ने देखा कि अदिति माता के कुंडल और छत्र यहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये मैं स्वर्ग में इंद्र को पहुंचा देता हूँ। तो स्वर्ग में जब गए इंद्र को देने के लिए तो इंद्र ने खुश होकर पारिजात वृक्ष का एक फूल भगवान को दिया कि ये आप रखिए भगवान को जैसे अर्पण किया। तो भगवान ने कहा तो कितना सुंदर पुष्प है। तो जाके घर पे गए तो रुक्मणी, क्योंकि रुक्मणी महारानी आई थी उनका स्वागत करने के लिए, रुक्मणी को ये पारिजात का पुष्प दे दिया। लो रुक्मणी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब ऐसा देखा सत्यवामा ने, उसको तो इतना दुख हुआ, बोला दीदी के लिए आप फूल लेकर आए, मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए, मुझे भी चाहिए, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें पूरा वृक्ष चाहिए, तो ठीक है मैं लेके आता हूँ, कोई बात आप पे ना दुखी नहीं हो, मैं लेके आता हूँ। और भगवान गए इंद्र के पास और इंद्र को बोला मुझे ये पारिजात वृक्ष चाहिए, परंतु क्योंकि शची जो इंद्र की शची जो इंद्र की पत्नी थी, उसने सोचा कि ये मनुष्यों के लिए नहीं है, ये तो देवताओं की वस्तु है, देवताओं के लोक में होती है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य मोहयंती यत सूर्य। तो फिर है ना, इंद्र भी भगवान के साथ लड़ाई करने के लिए आ गया, इंद्र भी भगवान के साथ लड़ाई कर रहा है, और भगवान ने लड़ाई की इंद्र के साथ, इंद्र से झगड़ा करके अपनी पत्नी के लिए वो वृक्ष लेकर आए। तो यहाँ इसलिए बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि भगवान कुछ भी करके अपनी पत्नियों को प्रसन्न करते थे, देवताओं के साथ झगड़ा करके भी लेके आते थे, अभी झगड़ा करके भी कोई वस्तु लेकर आते थे। तो जो नॉर्मली जिसके लिए झगड़ा नहीं करना पड़ता, ऐसे ही शॉपिंग सेंटर में जाते होंगे तो कितनी सारी महंगी महंगी चीजें उनको लेकर देते होंगे, जिस पर भी पत्नी हाथ रखती होगी वो लेके देते होंगे भगवान उनको। और अगर नहीं लेके देते, अब कभी सोचें कि भगवान अगर उन सबको प्रसन्न नहीं करते, अभी 16,108 पत्नियां अगर वो नाराज हो जाएंगी तो उनको मनाने में भगवान का सारा टाइम निकल जाएगा। तो फिर है ना, इनको तो इतना टाइम नहीं मिलेगा दूसरा काम करने के लिए, इसलिए जो बोलते थे ना फोन से कर देते कि बस इनका ये तो खुश रहे कम अज कम, फिर दूसरों को मैं आसानी से खुश कर लूंगा। यही बात को श्रीमती राधा रानी भी बताती हैं। एक बारी भ्रमण गीत में श्रीमती राधा रानी के पास एक भंवरा आता है, तो भंवरे को कहती तुम काले हो ना, मुझे पता है तुम कृष्ण के दूत हो इसीलिए काले हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों मनाने आए हो, मुझे मनाना छोड़ो, तुम जाओ कृष्ण के पास और कहो उसको कि मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, अपनी उन 16,108 पत्नियों को जाके मनाओ, अब मुझे मत याद करो, मतलब इस तरह से बताती हैं श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके पति बने, तो भगवान ऐसी इच्छाएं पूर्ण रूपेण पूरी करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप जिस भाव से मेरे पास आते हो, मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।